नमस्ते, मैं आरव हूँ। नाइन आर ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। ऑल द प्रेसिडेंट्स मनी अमेरिकी सांसद जेम्स कोमर की राजनीतिक खोजी गैर कथा पुस्तक है। इसका उपशीर्षक बाइडेन परिवार को समृद्ध बनाने वाली कथित गुप्त विदेशी योजनाओं की जाँच पर केंद्रित है। कोमर प्रतिनिधि सभा की ओवरसाइट और अकाउंटेबिलिटी समिति के अध्यक्ष के रूप में की गई अपनी जाँच को पुस्तक का आधार बनाते हैं। उनका मुख्य तर्क है कि जो बाइडेन के उपराष्ट्रपति रहने के दौर में बाइडेन परिवार के कुछ सदस्यों और सहयोगियों को चीन, रूस, रोमानिया, कजाकिस्तान तथा अन्य विदेशी स्रोतों से भुगतान मिले, जिनके व्यावसायिक औचित्य स्पष्ट नहीं थे। लेखक इन्हें प्रभाव बेचने, शेल कंपनियों और वित्तीय पारदर्शिता के व्यापक पैटर्न से जोड़ते हैं। यह पुस्तक निष्पक्ष न्यायिक निष्कर्ष नहीं, बल्कि एक प्रमुख रिपब्लिकन जांचकर्ता का तर्कपूर्ण पक्ष प्रस्तुत करती है। इसलिए इसे आरोपों, बैंक रिकॉर्डों की व्याख्या, राजनीतिक जवाबदेही और संस्थागत प्रतिक्रिया पर आधारित दस्तावेजी विवाद के रूप में पढ़ना उचित है। पुस्तक के निष्कर्षों को डेमोक्रेट सदस्यों और बाइडेन पक्ष ने अस्वीकार किया है, जो इसके पाठ के लिए आवश्यक संदर्भ है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, विदेशी भुगतानों के कथित पैटर्न की पड़ताल। पुस्तक का केंद्रीय ढांचा विदेशी स्रोतों से बाइडेन परिवार के सदस्यों और उनके सहयोगियों तक पहुंचे कथित भुगतानों की श्रृंखला है। कोमर अपनी समिति की 15 महीने की जांच का हवाला देकर लगभग $3 करोड़ के भुगतान का दावा करते हैं। उनका प्रश्न केवल धनराशि का नहीं है, बल्कि यह है कि विदेशी संस्थाओं को बदले में कौन सी ठोस सेवा, उत्पाद या विशेषज्ञता मिली। लेखक के अनुसार, नेटवर्किंग और सलाह जैसे सामान्य वर्णन इतने बड़े लेन देन को समझाने के लिए पर्याप्त नहीं है। इस तर्क की शक्ति इस बात में है कि सार्वजनिक पद से जुड़े परिवारों के निजी कारोबार में हितों के टकराव की संभावना कैसे बनती है। फिर भी पुस्तक के दावों और प्रमाणित अपराध के बीच अंतर बनाए रखना जरूरी है। समिति के डेमोक्रेट सदस्यों ने कहा कि उपलब्ध साक्ष्य, जो बाइडेन की पारिवारिक व्यावसायिक गतिविधियों में भागीदारी, लाभ या आधिकारिक हस्तक्षेप सिद्ध नहीं करते, जो बाइडेन ने जांच को निराधार कहा और जेम्स बाइडेन ने भी उनकी संलिप्तता से इनकार किया। अतः पाठक के लिए मुख्य विश्लेषणात्मक सीख यह है कि धन के प्रवाह, उसके आर्थिक आधार और राजनीतिक पहुंच के बीच संबंध को अलग अलग स्तरों पर परखना चाहिए। लेन देन का मौजूद होना अपने आप में भ्रष्टाचार का निर्णायक प्रमाण नहीं होता, पर सार्वजनिक विश्वास के लिए पारदर्शी स्पष्टीकरण की मांग अवश्य पैदा करता है। दूसरा, शेल कंपनियां, सहयोगी और धन के मार्ग का सवाल। कोमर का दूसरा महत्वपूर्ण तर्क वित्तीय संरचना पर केंद्रित है। वे आरोप लगाते हैं कि कई सीमित दायित्व कंपनियों, सहयोगियों और पारिवारिक संपर्कों के माध्यम से धन को वितरित किया गया। पुस्तक इस व्यवस्था को साधारण व्यक्तिगत आय के बजाय ऐसे ढांचे के रूप में प्रस्तुत करती है जिसमें भुगतान के मूल स्रोत और अंतिम लाभार्थी के संबंध को समझना कठिन हो सकता है। लेखक साझा बहीखाता व्यवस्था और परिवार के कई सदस्यों से जुड़े कानूनी प्रतिनिधित्व को भी इस नेटवर्क के संदर्भ में उठाते हैं। इसका व्यापक महत्व यह है कि जटिल कॉरपोरेट ढांचे वैध कारोबारी प्रयोजनों के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन वे नियामकों, पत्रकारों और मतदाताओं के लिए जवाबदेही की जांच कठिन बना देते हैं। पुस्तक इसी कठिनाई को प्रभाव बेचने के आरोप के समर्थन में रखती है। आलोचनात्मक पाठ में हालांकि दो सावधानियां जरूरी हैं। पहली, किसी कंपनी संरचना की जटिलता मात्र से अवैधता सिद्ध नहीं होती। दूसरी, बैंक रिकॉर्ड धन की आवाजाही दिखा सकते हैं, लेकिन वे हर मामले में सेवा, मंशा या राजनीतिक प्रभाव का पूरा अर्थ नहीं बताते। इस विषय पर पुस्तक की उपयोगिता किसी अंतिम कानूनी निर्णय में नहीं, बल्कि वित्तीय पारदर्शिता के प्रश्न को समझाने में है। यह पाठक को लाभकारी स्वामित्व, मध्यस्थों और दस्तावेजी सत्यापन जैसे विषयों पर अधिक सतर्क बनाती है। तीसरा, हंटर बाइडेन के विदेशी व्यावसायिक संबंधों पर लेखक का आरोप। पुस्तक में हंटर बाइडेन को कथित विदेशी सौदों के प्रमुख केंद्र के रूप में रखा गया है। कोमर का तर्क है कि हंटर को ऐसी भूमिकाएं और अवसर मिले जिनके लिए उनकी घोषित व्यावसायिक योग्यता और मिलने वाले पारिश्रमिक के बीच असंगति दिखाई देती है। लेखक चीन और रूस से संबंध रखने वाली संस्थाओं सहित विदेशी संपर्कों को विशेष महत्व देते हैं। इस प्रस्तुति का उद्देश्य यह संकेत देना है कि हंटर बाइडेन का मूल्य उनके पेशेवर योगदान से अधिक उनके पारिवारिक नाम और उस नाम से मिलने वाली राजनीतिक पहुंच। यह प्रभाव बेचने की बहस का परिचित ढांचा है जिसमें प्रत्यक्ष आधिकारिक निर्णय के बजाय पहुंच, परिचय और संभावित अनुकूलता को वस्तु की तरह देखा जाता है। लेकिन पुस्तक पढ़ते समय आरोप, नैतिक प्रश्न और कानूनी निष्कर्ष को अलग रखना अनिवार्य है। हंटर बाइडेन के कर संबंधी संघीय मामले सार्वजनिक रूप से दर्ज रहे हैं, किंतु वे स्वयं इस पुस्तक के हर व्यापक आरोप को सिद्ध नहीं करते। इसी प्रकार किसी रिश्तेदार का निजी कारोबार अपने आप किसी निर्वाचित अधिकारी की भागीदारी प्रमाणित नहीं करता। कोमर की प्रस्तुति का महत्व इस कठिन प्रश्न में है कि शक्तिशाली परिवारों के रिश्तेदारों की विदेश आधारित कमाई किन प्रकटीकरण मानकों के अधीन होनी चाहिए। पुस्तक इस सवाल का कठोर राजनीतिक उत्तर देती है, पर पाठक को स्वतंत्र स्रोतों और विरोधी तर्कों के साथ उसका मूल्यांकन करना चाहिए। चौथा, जो बाइडेन की कथित जानकारी और पहुंच के विवादित संकेत। कोमर के कथानक में सबसे संवेदनशील मुद्दा जो बाइडेन और विदेशी व्यापारिक संपर्कों के बीच कथित निकटता है। लेखक लिखते हैं कि जो बाइडेन ने उन कुछ विदेशियों से मुलाकात की जो परिवार या सहयोगियों को भुगतान करने वाली संस्थाओं से जुड़े बताए गए। पुस्तक इन मुलाकातों, पारिवारिक संपर्कों और समयक्रम को इस प्रश्न से जोड़ती है कि क्या उपराष्ट्रपति को अपने परिवार के व्यावसायिक प्रयासों की जानकारी थी या क्या उनकी प्रतिष्ठा और पहुंच का उपयोग किया गया। यहाँ पुस्तक प्रत्यक्ष रिश्वत के एक ही प्रमाण पर निर्भर होने के बजाय परिस्थिति जन्य पैटर्न बनाने की कोशिश करती है। यही इसकी राजनीतिक प्रभावशीलता और तथ्यात्मक सीमा दोनों है। परिस्थिति जन्य साक्ष्य जांच की दिशा तय कर सकते हैं, मगर जिम्मेदारी तय करने के लिए संपर्क, मंशा, आधिकारिक कार्रवाई और लाभ के बीच अधिक स्पष्ट संबंध की जरूरत होती है। समिति के डेमोक्रेट सदस्यों ने कहा कि जो बाइडेन ने परिवार के उद्यमों में भाग नहीं लिया, उनसे लाभ नहीं कमाया और उन्हें लाभ पहुंचाने के लिए आधिकारिक कदम नहीं उठाए। जेम्स बाइडेन की गवाही भी इसी निषेध के अनुरूप बताई गई। इसलिए यह अध्याय पाठक को केवल बाइडेन विवाद नहीं बल्कि सार्वजनिक जीवन की एक स्थायी समस्या समझने में मदद करता है। निकटता, पहुंच और प्रभाव के संकेत लोकतांत्रिक जवाबदेही में महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उन्हें प्रमाण की अलग कसौटियों पर जांचना पड़ता है। अंत में मीडिया, न्याय व्यवस्था और कांग्रेस की जांच पर कोमर का दृष्टिकोण ऑल द प्रेसिडेंट्स मनी केवल वित्तीय आरोपों की सूची नहीं है, यह उस संस्थागत संघर्ष का भी विवरण है जिसमें कोमर मीडिया, खुफिया तंत्र, न्याय विभाग और कांग्रेस के डेमोक्रेट सदस्यों की भूमिका पर तीखी आलोचना करते हैं। लेखक का मत है कि बाइडेन परिवार से जुड़े आरोपों को पर्याप्त गंभीरता से नहीं लिया गया और राजनीतिक पक्षपात ने जांच तथा कवरेज को प्रभावित किया। इसी आधार पर वे प्रभाव बेचने को स्पष्ट रूप से परिभाषित कर उसे प्रतिबंधित करने वाले द्विदलीय कानून की आवश्यकता की बात करते हैं। यह प्रस्ताव पुस्तक को केवल आरोप पत्र से आगे ले जाकर नीति और जवाबदेही की बहस में रखता है। फिर भी इसकी संस्थागत आलोचना भी विवादों से मुक्त नहीं है। गार्जियन की समीक्षा ने पुस्तक को अधूरा और विरोधाभासी बताया, विशेषकर हंटर बाइडेन के सितंबर 2024 के कर मामलों में दोष स्वीकार करने का उल्लेख न होने पर। उसी समीक्षा में बॉब वुडवर्ड से जोड़े गए कथनों को वुडवर्ड द्वारा गलत बताने का भी उल्लेख है। कोमर ने एक असफल महाभियोग संबंधी सुनवाई से अपनी विश्वसनीयता को हुई क्षति स्वीकार की है। ये बिंदु पुस्तक के प्रति दोहरा दृष्टिकोण मांगते हैं। पाठक को संस्थाओं की विफलताओं के आरोपों को गंभीरता से सुनना चाहिए, पर लेखक की चयन प्रक्रिया, राजनीतिक स्थिति और स्रोतों की स्वतंत्र पुष्टि को भी उतनी ही गंभीरता से जांचना चाहिए। निष्कर्ष में, यह पुस्तक उन पाठकों के लिए सबसे उपयोगी है जो अमेरिकी राजनीति में पारिवारिक व्यवसाय, विदेशी धन, संसदीय जांच और प्रभाव बेचने के आरोपों को एक स्पष्ट पक्षधर दृष्टिकोण से समझना चाहते हैं। जेम्स कोमर की विशेष स्थिति इसे सामान्य राजनीतिक टिप्पणी से अलग बनाती है। वे केवल बाहरी पर्यवेक्षक नहीं हैं, बल्कि प्रतिनिधि सभा की उस जांच के प्रमुख रहे हैं जिस पर पुस्तक आधारित है। इसलिए इसमें समिति की जांच, बैंक रिकॉर्डों की व्याख्या और कांग्रेस के भीतर के संघर्ष का प्रत्यक्ष राजनीतिक परिप्रेक्ष्य मिलता है। इसी कारण यह पुस्तक समर्थकों को बाइडेन परिवार की वित्तीय गतिविधियों पर केंद्रित तर्कपूर्ण विवरण देगी, जबकि आलोचनात्मक पाठकों को यह समझने का अवसर देगी कि आधुनिक राजनीतिक आरोप कैसे निर्मित, प्रसारित और विवादित होते हैं। पुस्तक की सीमा भी इसी में है। इसका स्वर अभियोजक जैसा है और इसके मुख्य निष्कर्षों को बाइडेन पक्ष तथा समिति के डेमोक्रेट सदस्यों ने चुनौती दी है। अतः इसे निष्पक्ष जांच रिपोर्ट या अंतिम कानूनी फैसला मानना उचित नहीं होगा। समान राजनीतिक पुस्तकों की तुलना में इसका अंतर विशिष्ट लेन देन, कॉरपोरेट संरचनाओं और संसदीय जांच की प्रक्रियाओं पर जोर है। इसका बौद्धिक लाभ यह है कि पाठक वित्तीय अपारदर्शिता, हितों के टकराव और प्रमाण के स्तरों के बीच भेद करना सीख सकता है। सर्वोत्तम पाठन अनुभव के लिए इसे स्वतंत्र रिपोर्टिंग, सार्वजनिक दस्तावेजों और विपरीत राजनीतिक विश्लेषणों के साथ पढ़ना चाहिए। तब यह पुस्तक किसी एक दावे को मान लेने का माध्यम नहीं, बल्कि शक्ति और निजी लाभ के संबंध पर अधिक कठोर प्रश्न पूछने का आधार बनती है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं जेम्स कोमर, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।